दिन भर 23 मई दिन मंगलवार, मैं हूं रेहान फदल। भारतीय सेना का दावा कि उसने एलओसी पर पाकिस्तानी चौकियों को बर्बाद किया।
एज पार्ट ऑफ आवर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस, पेनेट्रेटिव फायर असॉल्ट्स अक्रॉस लाइन ऑफ कंट्रोल आर बीइंग अंडरटेकन बाय द इंडियन आर्मी।
मैनचेस्टर बम धमाकों की हर जगह निंदा, और मोदी सरकार के 3 साल श्रृंखला में देखेंगे क्या है मोदी का रिपोर्ट कार्ड रोजगार के मामले में।
10 में जहां 10 लाख नए लोग एम्प्लॉय होते थे, वो अभी केवल 1.5-2 लाख हो रहे हैं। पहली बात तो जीडीपी में गिरावट आई है, उस वक्त 8.5% तो ग्रोथ था, मगर इनके दौरान जीडीपी में गिरावट आई है। जो ये कह रहे हैं 7% ग्रोथ है, मेरे हिसाब से 5.5% ज्यादा ग्रोथ नहीं है।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, निखिल रंजन से। ब्रिटेन के मैनचेस्टर में हुए बम धमाके में मरने वालों की तादाद 23 तक पहुंच गई है, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। 60 दूसरे लोग भी घायल हुए हैं। मरने वालों में एक 8 साल की बच्ची भी शामिल है। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे के मुताबिक पुलिस मान रही है कि वो उस आत्मघाती हमलावर को जानती है जिसने कल शाम मैनचेस्टर के पॉप कंसर्ट में हमला किया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी ये साफ नहीं है कि हमलावर ने अकेले ही इसे अंजाम दिया या उसके साथ और लोग भी थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये हमला कायरता की निशानी है। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पेरिस में ब्रिटिश दूतावास जाकर श्रद्धांजलि पत्र पर दस्तखत किए और कहा कि ये साफ है।
Après l'attentat survenu la nuit dernière à Manchester, c'est évidemment toute l'Europe et l'Europe libre qui a été attaquée.
इमैनुअल मैक्रों कह रहे हैं कि ये साफ है कि पूरे के पूरे मुक्त यूरोप पर कल रात मैनचेस्टर में हमला किया गया। ब्रिटेन और यूरोप के युवाओं का दिल बैठ गया है। कुछ ही समय पहले मैंने थेरेसा मे से बात की और उन्हें बताया कि हमारी भावनाएं और सहयोग उनके साथ हैं। ये हमारी भी इच्छा है कि आतंकवाद के खिलाफ जंग में यूरोपीय सहयोग को मजबूत किया जाए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के शब्द। 12 साल पहले लंदन हमलों के बाद ये ब्रिटेन में सबसे बड़ा चरमपंथी हमला है। लंदन बमबारी में 50 लोगों की मौत हुई थी। सोशल मीडिया पर इस्लामिक स्टेट ने एक बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि एक आईएस समर्थक ने ये हमला किया। भारत में कई राजनेताओं और मशहूर हस्तियों के करीब रहे तांत्रिक चंद्रास्वामी का 66 साल की उम्र में आज निधन हो गया। हाल ही में उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव समेत तमाम बड़े नेताओं के साथ उनके रिश्ते रहे और कई विवादों और घोटालों से भी उनका नाम जुड़ा रहा। इसराइल के दौरे पर गए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यरूशलम में कहा है कि वो फलस्तीन और इसराइल के बीच विवाद को खत्म करने के लिए निजी रूप से प्रतिबद्ध हैं। ट्रंप ने कहा कि इसराइली और फलस्तीनी दोनों में शांति की इच्छा है।
Both Israelis and Palestinians seek lives of hope for their children.
इसराइली और फलस्तीनी दोनों अपने बच्चों के लिए उम्मीद भरा जीवन चाहते हैं और हम जानते हैं कि शांति संभव है अगर हम अपनी पिछली तकलीफें और असहमतियों को अलग रख सकें और मिलकर काम करें तो करीब आधी सदी या उससे भी ज़्यादा लंबे समय से चले आ रहे संकट को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाएंगे। जैसा कि मैंने बार बार कहा कि मैं निजी रूप से इसराइली और फलस्तीनियों के बीच शांति समझौते में मदद करने के लिए निजी रूप से प्रतिबद्ध हूँ। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। ऑस्ट्रिया ने तुर्की पर नाटो की गतिविधियों से गैर जिम्मेदाराना तरीके से सहयोग वापस लेने का आरोप लगाया है। ये नाटो की वो गतिविधियां हैं जिनमें ऑस्ट्रिया भी शामिल है। ऑस्ट्रियाई रक्षा मंत्री हांस ने आरोप लगाया कि तुर्की की सरकार यूरोप के सुरक्षा हितों को खतरे में डाल रही है, खासतौर से कोसोवो के शांति मिशनों में। ऑस्ट्रिया के योगदान पर रक्षा मंत्री का कहना है कि इससे उनकी इस आशंका को मजबूती मिली है कि तुर्की यूरोपीय संघ से बहुत दूर है। नाटो के एक अधिकारी ने कहा कि गठबंधन ऑस्ट्रिया के साथ अपना सहयोग खत्म नहीं कर रहा है। रोमानिया पर घरेलू हिंसा के मामलों से ठीक ढंग से नहीं निपटने के कारण जुर्माना लगाया गया है। एक महिला ने अपने पति के हाथों बार बार हिंसा का शिकार होने के बाद शिकायत दर्ज कराई थी। यूरोपीय मानवाधिकार कोर्ट ने रोमानियाई अदालतों को 8 मौकों पर अंजेलिका बाल्सन के खिलाफ हुई हिंसा के लिए उनके पति को जिम्मेदार ठहराने में नाकाम रहा। यूरोपीय कोर्ट ने इस बात पर गहरी चिंता जताई कि उनके अधिकारियों ने अंजेलिका को ही हिंसा के लिए उकसावे का दोषी माना। कोर्ट ने इसे लिंग आधारित भेदभाव माना है। ये भी कहा है कि आंकड़ों से पता चलता है कि ज़्यादातर रोमानियाई घरेलू हिंसा को सामान्य बात मानते हैं। जेम्स बांड का किरदार निभाकर मशहूर हुए अभिनेता रोजर मूर का आज निधन हो गया। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। भारतीय सेना का दावा है कि पाकिस्तान की घुसपैठ के खिलाफ उसने कार्रवाई करते हुए तोप से पाकिस्तान की चौकी को तबाह कर दिया है। उसने इस बारे में 30 सेकंड का एक वीडियो भी जारी किया है। सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल अशोक नरूला ने बताया है कि इस चौकी से चरमपंथियों की घुसपैठ में मदद की जाती थी। भारतीय सेना का कहना है कि ये वीडियो 9 मई का है। हालांकि पाकिस्तान ने इन आरोपों का खंडन किया है। विनीत खरे की रिपोर्ट।
भारत का दावा है कि उसने ये कदम आतंक विरोधी कार्रवाइयों के तहत उठाया है। ये आवाजें उस वीडियो की हैं जिन्हें भारतीय सेना की ओर से मीडिया को रिलीज किया गया। मीडिया से बात करते हुए भारतीय सेना के मेजर जनरल अशोक नरूला ने कहा,
As part of our counter terrorism operations, punitive fire assaults across line of control,
मेजर जनरल अशोक नरूला कह रहे थे कि आतंक विरोधी ऑपरेशन के अंतर्गत लाइन ऑफ कंट्रोल के पार दंड देने के लिए फायरिंग की गई है। भारतीय सेना का लाइन ऑफ कंट्रोल पर वर्चस्व है। ऐसा करते हुए जिन इलाकों से घुसपैठ होती है उन इलाकों को निशाना बनाया जाता है और घुसपैठ को खत्म कर दिया जाता है ताकि आतंकवादियों को कोई फायदा ना हो और वो घुसपैठ ना कर पाएं। मेजर जनरल नरूला ने कहा कि बर्फ के पिघलने और रास्तों के खुलने के कारण घुसपैठ में बढ़ोतरी की आशंका है। एक वक्तव्य में भारतीय सेना ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सेना घुसपैठियों को कवर देने के लिए गोलीबारी करती है, साथ ही लाइन ऑफ कंट्रोल के निकट स्थित गांवों पर भी पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी की गई। उधर पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग ISPR के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने भारतीय सेना के आरोपों का खंडन किया। ट्विटर पर एक वक्तव्य में उन्होंने लिखा, नौशेरा में पाकिस्तानी पोस्ट को बर्बाद करने के भारतीय दावे और LOC के पार आम नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना की फायरिंग के दावे गलत हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच गोलीबारी आम है। दोनों तरफ के गांवों में गोलीबारी के कारण लोग या तो घायल हुए हैं या उनकी मौत हुई है। उधर सैन्य गाड़ी पर एक कश्मीरी युवक को बांधने का आदेश देने वाले मेजर लितुल गोगोई ने आज पत्रकारों से बातचीत की। फारूक अहमद दार नाम के इस व्यक्ति को मिलिट्री गाड़ी से बांधने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था और इस कदम की कई हलकों ने कड़ी निंदा की थी। अपना पक्ष रखते हुए मेजर लितुल गोगोई ने कहा कि उनके पास ITBP के अधिकारी का फोन आया था कि करीब 1200 लोगों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया है और लोग पत्थर और पेट्रोल बम फेंक रहे हैं।
And at that moment of time, I saw a person.
गोगोई के अनुसार जब वो इलाके में पहुंचे तो मेगाफोन पर अपील करने के बावजूद लोग वहां पथराव कर रहे थे। मेजर गोगोई कह रहे थे कि उन्हें करीब 30 मीटर दूर एक व्यक्ति खड़ा नजर आया। मैंने अपने लड़कों से उसे पकड़ने को कहा। मेजर गोगोई ने कहा कि बाद में उन्होंने पाया कि वो व्यक्ति लोगों को कथित तौर पर पत्थर फेंकने के लिए भड़का रहा है और वो रिंग लीडर हो सकते थे। ये व्यक्ति फारूक अहमद दार थे। जैसे ही मैंने अपने लड़कों से उन्हें गाड़ी से बांधने के लिए कहा, पत्थरबाजी थोड़ी देर के लिए बंद हो गई और उसी छोटे से वक्त में हम वहां से निकल पाए। मैंने ये काम स्थानीय लोगों को बचाने के लिए किया। अगर गोली चलाई गई होती तो 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती थी। ये थे मेजर गोगोई के शब्द। सेना प्रमुख की ओर से मेजर गोगोई को कमेंडेशन लेटर देकर सम्मानित किया गया है। एक वक्तव्य में सेना ने कहा, मेजर गोगोई को सम्मानित करते हुए सभी कारणों का, जिनमें अफसर की उपलब्धि और मामले की जो जांच चल रही है उसके उभरते हुए पहलुओं का भी ध्यान रखा गया है। उधर विपक्षी नेताओं ने इसकी आलोचना की है। जनता दल यूनाइटेड नेता शरद यादव ने कहा, इससे कश्मीर में स्थिति और खराब होगी। खबरों के मुताबिक वाम नेता डी राजा ने कहा कि सेना को ऐसा नहीं करना चाहिए था और जम्मू कश्मीर के लोगों के प्रति संवेदनशीलता की जरूरत है। विनीत खरे, BBC दिल्ली।
ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने कहा है कि अब इसमें कोई शक नहीं है कि ब्रिटेन की जनता एक निर्दयी आतंकी हमले का शिकार हुई है। सोमवार रात ब्रिटेन के मैनचेस्टर शहर में एक आत्मघाती हमलावर ने एक पॉप कंसर्ट पर हमला किया था जिसमें 22 लोग मारे गए और 60 अन्य घायल हो गए। ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ समेत दुनिया भर के शीर्ष नेताओं ने इस हमले की निंदा की है। जुलाई 2005 में लंदन शहर में हुए सिलसिलेवार बम धमाके जिसमें 50 से ज़्यादा लोग मारे गए थे के बाद से ये ब्रिटेन में होने वाला सबसे बुरा हमला है। पूरी जानकारी के साथ दिव्या आर्य।
ब्रिटेन में सोमवार रात के 10:30 बज रहे थे, भारतीय समय के अनुसार मंगलवार सुबह के 3 बजे थे, जब मैनचेस्टर शहर के सबसे बड़े इंडोर स्टेडियम मैनचेस्टर अरीना में अमरीकी पॉप स्टार अरियाना ग्रांडे के कॉन्सर्ट के बाद धमाका हुआ।
oh
मरने वालों में बच्चे भी शामिल थे। मंगलवार सुबह लंदन में एक आपात बैठक के बाद ब्रितानी प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पुलिस तेजी से इस कोशिश में लगी है कि बीती रात में क्या कैसे हुआ इसकी पूरी तस्वीर खींच सके। मे ने कहा कि ये हमला कायरता की घटिया मिसाल है, जिसमें हमलावर ने जानबूझकर ऐसी जगह और वक्त चुना जिससे ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सके।
We all, every single one of us, stand with the people of Manchester at this
हम सब इस बुरे वक्त में मैनचेस्टर के लोगों के साथ खड़े हैं। आज हम उनको याद कर रहे हैं जिनकी मौत हो गई है और उनके शुक्रगुजार हैं जिन्होंने मदद की। इस विश्वास के साथ कि आतंकवादी कभी जीत नहीं सकते, बल्कि हमारे मूल्य, हमारा देश और हमारा जीने का तरीका हमेशा जीतेगा।
ब्रितानी प्रधानमंत्री थेरेसा मे के शब्द। मैनचेस्टर पुलिस ने दावा किया कि उन्होंने एक 23 वर्षीय आदमी को हमले से जुड़े होने के संदेह में गिरफ्तार किया है। ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस के इयन हॉपकिंस ने कहा,
We have been treating this as a terrorist incident and we believe at this stage the attack last night was conducted by one man.
हम इसे एक आतंकी हमला मान रहे हैं जिसे एक आदमी ने अंजाम दिया। हमारे लिए सबसे जरूरी ये जानना है कि वो अकेले काम कर रहा था या उसके साथ कोई नेटवर्क काम कर रहा था। मौजूदा जानकारी के मुताबिक उसके पास एक IED यंत्र था जिसके जरिए उसने ये धमाका किया।
ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस के इयन हॉपकिंस के शब्द। दुनिया भर से इस हमले की निंदा के संदेश आते रहे। फ्रांस ने इसे सबसे कायरतापूर्ण आतंकी हमला करार दिया। वहीं जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने भरोसा दिलाया कि जर्मनी के लोग ब्रिटेन के साथ हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसे एक अमानवीय अपराध बताया। मध्य पूर्व गए अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हमलावरों को दुष्ट लूजर्स यानी असफल लोगों की संज्ञा दी।
So many young, beautiful, innocent people living and enjoying their lives murdered.
इतने सारे युवा, खूबसूरत, बेकसूर लोग जो जिंदगी में मौज मस्ती कर रहे थे, कुछ दुष्ट लूजर्स ने उनकी हत्या कर दी। मैं उन्हें हैवान नहीं कहूंगा क्योंकि वो उन्हें पसंद आएगा। उन्हें लगेगा कि ये कोई महान शब्द है। मैं आज से उन्हें लूजर्स बुलाऊंगा क्योंकि वो वही हैं, असफल लोग। और ऐसे कई और लोग हमारे सामने आएंगे।
अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। मार्च में ब्रितानी संसद के पास एक हमले के बाद पुलिस ने चेतावनी दी थी कि अब और हमले हो सकते हैं। इसी सिलसिले में पिछले महीनों में ब्रितानी पुलिस देश भर में छापे मारती रही है। ब्रिटेन में 8 जून को आम चुनाव हैं, जिसके लिए अभियान इस वक्त जोर शोर से चल रहा था। अब इस धमाके को देखते हुए सभी बड़े राजनीतिक दलों ने चुनाव अभियान स्थगित करने की घोषणा की है।
दिव्या आर्य की रिपोर्ट। आइए सीधे चलते हैं मैनचेस्टर BBC संवाददाता पवन सिंह अतुल के पास, जो घटनास्थल के बिल्कुल नजदीक खड़े हुए हैं। पवन, बताएं क्या माहौल है, क्या देख पा रहे हैं आप?
जी रेहान, मैं इस वक्त साल्फर्ड ब्रिज पे हूँ, जहाँ से 20 कदम की दूरी पर वो अरीना है जहाँ पर कल रात को पॉप कंसर्ट हुआ। पॉप कंसर्ट खत्म होने के बाद लोग वापस लौट रहे थे, जब वो एक स्थानीय ट्रेन स्टेशन है उसकी सीढ़ियों से अंदर आ रहे थे तो उसी वक्त एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा दिया और उसमें 22 लोग मारे गए। अब तक 59 लोग जो है वो घायल हैं। इस वक्त यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा है, दुनिया भर का मीडिया यहाँ पहुंचा हुआ है। सारे शहर में बैरिकेडिंग है, बहुत कम सड़कों पे ट्रैफिक आपको देखने को मिलेगा। यहाँ हम लोग काफी 200-250 मीटर पैदल चलकर यहाँ तक आए हैं। चारों तरफ पुलिस है, माहौल में एक उदासी सी है। जगह जगह हमने पोस्टर देखे और नियॉन लाइट्स देखे जिन पे प्रे फॉर मैनचेस्टर लिखा हुआ था। और रेलवे स्टेशन से ही जहां हम उतरे और इस घटनास्थल के ओर आए, तब वहीं से रास्ते भर में एक शोक संदेश थे, जगह जगह पर फूल रखे हुए थे। यहां जिस सेल्फर्ड ब्रिज 150 साल पुराने पुल पे मैं खड़ा हूं, यहां पर लोग फूल छोड़ के जा रहे हैं।
अच्छा पवन, पवन ये बताएं कोई गिरफ्तारी की खबर, किसी को गिरफ्तार किया गया है इस पूरे मामले में?
जी हाँ, आज एक गिरफ्तारी हुई है एक 23 साल व्यक्ति की इस घटना के बारे में। लेकिन प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने खुद अपने बयान में कहा है कि हम अटैकर की जो आइडेंटिटी है उससे वाकिफ हैं, लेकिन उसको हम अभी फिलहाल सार्वजनिक नहीं करेंगे। तो वो उनका नाम नहीं बताया गया, लेकिन उनका इसके अलावा एक और अहम जानकारी ये है कि यहाँ मैनचेस्टर में पुलिस ने कुछ जगह पर एक कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन किए हैं। कुछ संदिग्ध सामान मिला था और उसका एक नियंत्रित जगह पर जाकर उसका धमाका करवाया है। तो हालांकि उसमें कोई चिंता की बात अभी नहीं बताई है, लेकिन ये जानकारी भी आज ही की मैनचेस्टर
अच्छा पवन, आपकी किसी चश्मदीद से कोई मुलाकात, कोई प्रत्यक्षदर्शी सामने आया है?
जी, जब से हम रेलवे स्टेशन से उतरे हैं हमें बहुत सारे लोग मिले हैं जो कह रहे हैं कि हाँ हमें कल की घटना के बारे में पता है और हम वहाँ थे। हमें सबसे दिलचस्प किस्सा सुनाया सज्जाद अली खान जेलम जिले के पाकिस्तान से, जो हमारी टैक्सी में हमें लेकर आए। वो कह रहे हैं कि रात को उनके टैक्सी ड्राइवरों का एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसने ये खबर उन तक पहुँचाई और सब टैक्सी ड्राइवर यहाँ अरीना तक आए और वो घायलों को अस्पताल तक पहुंचा रहे थे और जो अफरा तफरी मची थी उन लोगों को होटलों तक पहुंचा रहे थे। और उन्होंने ये सब काम बिना पैसे के किया। उन्होंने साफ किया कि वो मुसीबत की घड़ी थी और हम किसी हाल में किसी से पैसा नहीं लेने वाले थे, उल्टा वो लोगों का छोटा मोटा उपचार भी कर रहे थे। और अपनी टैक्सियों में भर भर कर रात भर उसने मुझे बताया कि वो सुबह 6-7 बजे तक वो यही काम करते रहे। जहाँ भी जो भी जिसे भी मदद की दरकार थी उसे वो पूरा करते रहे और लोगों को अस्पतालों तक पहुंचाते रहे। तो उनकी वैसे स्थानीय लोग भी काफी तारीफ कर रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे अच्छी खासी पाकिस्तानी मूल की आबादी इस शहर में है। ये ब्रिटेन का तीसरा बड़ा शहर है जहाँ काफी मुसलमान आबादी है जो पाकिस्तान से आती है।
बहुत बहुत धन्यवाद पवन सिंह अतुल मैनचेस्टर से आपका। ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। विवादास्पद तांत्रिक चंद्रस्वामी का निधन हो गया है। यूं तो चंद्रस्वामी मूल रूप से एक ज्योतिषी थे लेकिन नरसिम्हा राव से करीबी के कारण पहली बार चर्चा में आए थे। इसके बाद तंत्र मंत्र के अलावा राजनीतिक जोड़ तोड़, हथियारों के सौदागरों से संबंधों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राव और उनकी सरकार के नाम पर सौदेबाजी में चंद्रस्वामी सर्वाधिक चर्चित रहे। हमारे साथी राजेश जोशी को चंद्रस्वामी से मिलने का मौका मिला था। मैंने राजेश जोशी से पूछा कि अगर आपसे कहा जाए कि चंद्रस्वामी को डिस्क्राइब करें तो किस तरह से बताएंगे, किस तरह के शख्स थे चंद्रस्वामी?
चंद्रस्वामी बहुत ही प्रभावित करने वाले व्यक्तित्व थे। उनको सिर्फ एक पंक्ति में अगर मैं उनके व्यक्तित्व का थोड़ा सा झलक आपको दूं तो ये कहा जा सकता है कि वो आंखों में धूल झोंक कर लोगों को अपना मुरीद बनाते थे। और जिन जिन लोगों को उन्होंने अपना मुरीद बनाया उनमें बड़े बड़े देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, फिल्म एक्ट्रेस एलिजाबेथ टेलर जैसी फिल्म एक्ट्रेस, बड़े बड़े हथियारों के दलाल, सौदागर, बादशाह और अफसर, कौन नहीं शामिल था? कौन ऐसी राजनीतिक पार्टी है भारत में कुछ अपवादों को छोड़ करके जिसके लोग चंद्रस्वामी के दरबार में नहीं जाते थे? तो उनका व्यक्तित्व कम से कम 90 के दशक में ऐसा था दिल्ली में कि अगर कुछ भी काम करवाना हो किसी को तो चंद्रस्वामी के दर से होकर गुजरना पड़ता था।
आपको भी उनसे मिलने का मौका मिला था, बताइए किस संदर्भ में?
मुझसे वो दिलचस्प मुलाकात है बहुत। मैं पूरा अगर तफसील में जाऊँगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। किस्सा ये है कि बबलू श्रीवास्तव नाम का एक अंडरवर्ल्ड डॉन हुआ करता था जिसको सीबीआई नेपाल से गिरफ्तार करके हिंदुस्तान यानी दिल्ली में लेके आए थे और दिल्ली में सीबीआई हेडक्वार्टर्स में उनका इंटरोगेशन हो रहा था। मैं उन दिनों जनसत्ता अखबार में काम करता था और मुझे पता चला कि बबलू श्रीवास्तव का इंटरोगेशन हो रहा है। मुझे किसी ने बताया कि वो बड़े बड़े लोगों का नाम बबलू श्रीवास्तव ने लिया है लेकिन अब सूत्रों के हवाले से खबर में नहीं चलाना चाहता था। तो जब बबलू श्रीवास्तव को कानपुर जेल में ले जाया गया मैं पीछे पीछे पहुंच गया और वो रिपोर्टरी जो तिकड़म होती है वो लगा के खुद को मैंने स्मगल कर लिया कानपुर जेल के अंदर और वहां बबलू श्रीवास्तव से मैंने बाकायदा रिकॉर्डेड इंटरव्यू कर लिया और उसमें उन्होंने कहा कि चंद्रस्वामी के संबंध तमाम लोगों से हैं, उसमें अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का भी उन्होंने नाम लिया। और ये ठीक यही बात उन्होंने सीबीआई की अपने जो इंटरोगेशन था उसमें भी ये बात कही। ये खबर जब अखबार में छपी दूसरे दिन जो गृह राज्य मंत्री थे राजेश पायलट उन्होंने चंद्रस्वामी की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए। तो इस खबर के बाद चंद्रस्वामी कम से कम 6 महीने तक जेल में रहे। उनके खिलाफ तमाम पुराने केसेस, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के केसेस, धोखाधड़ी के केसेस, ये सब खुलने लगे। और फिर तो राजीव गांधी की हत्या वाला जो मामला था उसमें भी चंद्रस्वामी पर तमाम तरह के आरोप लगे। जैन कमीशन ने बड़ा इंटरोगेशन उनके साथ किया। तो वो एक दिलचस्प किस्सा मेरे साथ हुआ कि इस सब के बाद एक बार उन्होंने मुझे बुलाया अपने आश्रम में जो यहीं दिल्ली में है और उन्होंने एक जादू मुझे दिखाया, मुझसे 3 सवाल पूछे। ये कहा कि एक पक्षी का नाम लो, एक फूल का नाम लो और एक अंक बताओ। तो मैंने कह दिया कि 5 और मोर और फूल जो है वो कमल कह दिया। वो पहले से कागज़ में उन्होंने लिखा हुआ था और तुरंत मेरे मुंह पर फेंका वो कागज़ और कहा कि अपना भविष्य देख लो। तो मैं चमत्कृत रह गया, जैसे कि तमाम दूसरे जो लोग थे वो भी चमत्कृत रह जाते होंगे जिनमें नरसिम्हा राव का भी नाम शामिल था।
चंद्रस्वामी के बारे में बता रहे थे राजेश जोशी। विधायक अशोक सिंह की हत्या के आरोप में जेल में बंद पूर्व सांसद और राजद नेता प्रभुनाथ सिंह सहित दो लोगों को हजारीबाग कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रभुनाथ सिंह के साथ ही उनके भाई दीनानाथ सिंह और रितेश सिंह को भी उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने तीनों पर 40,000 रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। 1995 में अशोक सिंह की गर्दनी बाग थाना के अंतर्गत उनके सरकारी आवास पर बम मारकर हत्या कर दी गई थी। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं रांची से नीरज सिन्हा।
हत्या के इस मामले में प्रभुनाथ सिंह समेत तीन लोगों को पिछले 18 मई को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में केंद्रीय कारा हजारीबाग भेज दिया गया था। साथ ही 23 मई को सजा सुनाने की तारीख तय की गई थी। मंगलवार की सुबह हजारीबाग के सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्हें यह सजा सुनाई। तब प्रभुनाथ सिंह जेल में थे। हालांकि बड़ी संख्या में उनके समर्थक कोर्ट पहुंचे थे। एहतियातन कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। गौरतलब है कि 1995 में जनता दल के विधायक अशोक सिंह की हत्या में प्रभुनाथ सिंह आरोपी बनाए गए थे। इसके दो साल बाद यह मामला पटना से हजारीबाग स्थानांतरित हुआ, जबकि साल 2008 में उन पर आरोप गठित हुआ था। प्रभुनाथ सिंह की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता विजय सिंह का कहना था,
रहम करने की बात तो हमने अभी भी बोली है और हमें निम्न न्यायालय में जो वो सारे बातों को हमने रखा, हर बिंदुओं पर चर्चा हुई, हमने बहस किया। अब हमें हम लोग अब हाईकोर्ट जाएंगे, पर भगवान पर पूरा विश्वास है। और जो एक बातें आ रही थी न्यूज में कि ये चांदनी देवी के द्वारा यह केस ट्रांसफर हुआ है, तो उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग के पिटीशन पर 21/4/97 को माननीय उच्च न्यायालय के जीएस चौबे ने यहाँ केस ट्रांसफर किया था।
इधर फैसले के इंतजार में विधायक अशोक सिंह के कई समर्थक और परिजन भी बिहार से हजारीबाग पहुंचे थे। उनके भाई तारकेश्वर सिंह की जुबानी,
स्वच्छंद वातावरण में लगता है कि झारखंड से हजारीबाग कोर्ट से जो न्याय मिला उसका हर कोई स्वागत कर रहा है, बार बार मना रहा है, मेरा परिवार भी और पूरा असाधनवासी।
बहरहाल बिहार में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद सरीखे शीर्ष नेता और सत्ता के करीब रहे प्रभुनाथ सिंह पर कई मुकदमे दर्ज हुए, पर इस मामले में जो सजा मिली है उससे राजनीतिक जीवन में उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नीरज सिन्हा, बीबीसी रांची।
बीबीसी हिंदी मोदी सरकार के तीन साल पूरे होने पर सिर्फ उन मुद्दों की पड़ताल कर रही है जिन्हें बैलेंस शीट पर परखा जा सकता है। इस विशेष श्रृंखला की पहली कड़ी में बात रोजगार के सृजन की हो रही है। भारत में हर साल डिग्रियां लेकर नौकरी के बाजार में 1,20,00,000 युवक युवतियां आते हैं, मगर इनके हाथ निराशा ही लगती है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 7 सालों में भारत में नौकरियों का औसत सबसे न्यूनतम पर है। बीबीसी संवाददाता सलमान रवि की रिपोर्ट।
मैं डॉक्टर विनोद, मैंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन।
ये हैं विनोद कुमार यादव जो बेरोजगारी के एक लंबे दौर से गुजर रहे हैं और आपको अपनी आपबीती भी सुना रहे हैं।
2013 से लेके 2017 के बीच आज तक मैं जॉब की तलाश में हूँ, नौकरी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें मैंने कई यूनिवर्सिटीज में अप्लाई की लेकिन कहीं भी इंटरव्यू नहीं हो रहा है, कहीं उसका री एडवर्टाइजमेंट निकाला जा रहा है, जैसे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में।
ये कहानी सिर्फ विनोद कुमार की नहीं है बल्कि हर साल डिग्री लेकर नौकरी के बाजार में आने वाले 1,20,00,000 युवक युवतियों की भी है, क्योंकि पिछले 7 सालों में भारत में नौकरियां कम होती चली गई हैं और इस साल नौकरियों का औसत सबसे कम है।
लेकिन
दो 2013 में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उस समय प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी ने मंच से घोषणा की थी कि अगर उनकी सरकार जीत कर आती है तो हर साल 1,00,00,000 नौकरियों का सृजन होगा। नौकरियां नहीं सृजित कर पाने को लेकर उन्होंने उस वक्त की यूपीए की सरकार की जमकर आलोचना भी की।
लोकसभा के चुनाव में वादा किया था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो 1,00,00,000 लोगों को रोजगार देंगे, वादा किया था।
हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने ट्वीट कर कहा कि अगस्त 2016 में बेरोजगारी की दर 9.5% थी, जो फरवरी 2017 में घटकर 4.8% हो गई है, यानी लोगों को रोजगार मिला है। लेकिन भारत सरकार के ही श्रम मंत्रालय के अधीन लेबर ब्यूरो के आंकड़ों के हिसाब से पिछले 8 सालों में रोजगार में 84% की गिरावट दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा नुकसान आईटी क्षेत्र को हुआ है। हालांकि आईटी क्षेत्र के व्यापार समूह नैसकॉम के अनुसार विपरीत परिस्थितियों के बावजूद इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा रोजगार का सृजन हुआ है। आर्थिक मामलों के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार एम के वेणु का कहना है कि जहां तक औद्योगिक उत्पादन का सवाल है तो उसमें भी 1% की कमी देखी जा रही है। ऊपर से नोटबंदी की मार भी बेरोजगारी का बड़ा कारण है।
2010 में जहां 10 लाख नए लोग एम्प्लॉय होते थे, वो अभी केवल 1.5-2 लाख हो रहे हैं। पहली बात तो जीडीपी में गिरावट आई है। उस वक्त 8.5% तो ग्रोथ था, हालांकि वो जॉबलेस ग्रोथ उसको भी ये नहीं कहा जा सकता था कि बहुत ही जॉब जनरेटिंग था, मगर फिर भी कुछ एम्प्लॉयमेंट हो रहा था। मगर इनके दौरान जीडीपी में गिरावट आई है, जो मेरे हिसाब से ये कह रहे हैं 7% ग्रोथ है, मेरे हिसाब से 5.5% ज्यादा ग्रोथ नहीं है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी आप देखिए इस साल 1% से कम है। ऊपर से डिमोनेटाइजेशन हुआ, ग्रोथ नीचे गिरा है। और ये आपको जो बैंक क्रेडिट का जो आंकड़ा दिखाता है कि बैंक क्रेडिट इस साल 2016-17 में 60-year लो में है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्ध भारतीय मजदूर संघ यानी बीएमएस के अध्यक्ष ब्रजेश उपाध्याय कहते हैं कि भारत में जो आर्थिक नीति का मॉडल है वो पूंजीवाद को ही बढ़ावा देता है।
आईटी इंडस्ट्री कोई ट्रेडिशनल रोजगार देने वाला क्षेत्र नहीं था, अभी 4-6-10 साल पहले डेवलप हुआ, अभी खत्म हो गया। अभी एक जो थीम चले ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आए, सस्टेनेबल इंडस्ट्री जाए, सस्टेनेबल सारी चीजें, तो सस्टेन करने वाली चीजें नहीं आ रही है, ये सब कैजुअल आ रही है। ये जो फीचर सभी डेवलप हुए हैं इकोनॉमिक पॉलिसी में, ये सब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मॉडल है। उसमें कैपिटल गेन कर लेते हैं, बाकी की चीजें गेन नहीं हो रही, ना एम्प्लॉयमेंट आता है, ना पॉवर्टी जा रही है, ना वेज इंक्रीज हो रही है। ये तो नेचुरल कोर्स है भाई साहब, मतलब ये सब जो आर्थिक ढांचा बना है, जो आर्थिक नीति है, ये सब उसके दुष्परिणाम है। और ये सब कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी है, मार्केट इकोनॉमिक पॉलिसी है। मार्केट बूम मतलब मार्केट में जो कैपिटल है, कैपिटल को गेन हो रहा है, कैपिटलिस्ट को बेनिफिट हो रहा है, बाकी किसी को नहीं हो रहा है।
वहीं दूसरी तरफ मजदूर नेता और सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियंस यानी C2 के तपन सेन मानते हैं कि पिछले 3 सालों में भारत में जो भी विदेशी पूंजी निवेश हुआ है वो सिर्फ भारतीय कंपनियों के शेयरों को खरीदने के लिए हुआ है।
जो पूरा रोक नहीं पाया, जो चल रहा है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में जो एक पर एक कदम उठाने जा रहा है, वो हमारे देश के उत्पादनी जो ढांचा है उसको डिमोलिश कर रहा है, जस्ट सर्व द फॉरेन कैपिटल। विदेशों में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, इवन इन द रिचेस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस, ये लोग अपने इंडस्ट्री का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के अंडर यूटिलाइजेशन में भुगत रहा है, उसका पूरा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का बंदोबस्त कर रहा है मोदी जी, हमारा देश का प्रोडक्शन सिस्टम को डिमोलिश करते हुए।
बढ़ती बेरोजगारी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रालयों से जो प्रस्ताव मंत्रिमंडल को स्वीकृति के लिए भेजे जा रहे हैं उनमें अब ये बताना अनिवार्य होगा कि उन योजनाओं से कितने रोजगार सृजित होंगे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित राज्यों को भी निर्देश भेजे गए हैं कि नई नौकरियां सृजित करने के लिए वो क्या कदम उठा रहे हैं वो केंद्र सरकार को फौरन बताएं। सलमान रावी, BBC, दिल्ली।
और चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। भारतीय सेना ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में की गई कार्रवाई में पाकिस्तान की चौकियों को नुकसान पहुंचा है। ब्रिटेन के मैनचेस्टर में हुए बम हमले में मरने वालों की तादाद 23 तक पहुंच गई है, जिनमें कई बच्चे भी हैं। इसराइल के दौरे पर गए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यरूशलम में कहा कि वो फलस्तीन और इसराइल के बीच विवाद को खत्म करने के लिए निजी रूप से प्रतिबद्ध हैं। BBC समाचार।
दिन भर को यहीं विराम देते हैं। स्टूडियो संभाल रहे थे अजीत सारथी, रेहान फतल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।